Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. प्रकाशन सरस्वती का संवाद चर्चा किए और प्रकाशन सरस्वती का संवाद ये है कि महाजनेन गता सुपंता, महाजन के अनुसार या गुरुओं के मुख से हमको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से श्रवण करना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना हमारा विधि है। और श्रीमद् भागवतम जो है सारे वेदांत का सार है और साथ साथ में वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य है। और साथ साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु ने और प्रकाशन सरस्वती और उनके सारे शिष्यों को उन्होंने क्या किया, आत्माराम वर्ष आत्मारामस्य मुनयो ग्रंथापुरुख में कुर्वन्ति हेतु किं भक्ति मित्तं भूतगणो हरि। ये जो श्लोक है उसके ऊपर उन्होंने 61 प्रकार व्याख्या सुनाया जिसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार आत्मारामस्य मुनयो वो मुनि लोग जो अपने आप में रमण करते हैं, संपूर्ण रूप में संतुष्ट है, वो भी कृष्ण की लीलाओं के प्रति वो आकृष्ट हो जाते हैं। दे आर अट्रैक्टेड टू द पास्टाइम्स ऑफ कृष्ण। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथापुरुषः। अभी कन्वर्सेशन विद सारंग भट्टाचार्य, सारंग भट्टाचार्य के प्रति उनका संवाद चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद वो निकल पड़े, वो जाना चाहते थे वृंदावन जाना चाहते थे। तो खास करके आज जो है बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, आज शांतिपुर फेस्टिवल, जिसमें अद्वैताचार्य के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु पहला भिक्षा ग्रहण किए। अद्वैताचार्य बोलते महाप्रभु को कि आप हमारे घर में आइए और भिक्षा ग्रहण कीजिए। अद्वैताचार्य का दो जगह उनका निवास स्थान था, एक जगह मायापुर में, दूसरा शांतिपुर में। तो शांतिपुर फेस्टिवल आज मनाया जाता है। मायापुर नवद्वीप परिक्रमा समाप्त होने के बाद नवद्वीप परिक्रमा में जितने भक्त हैं वो सब लोग शांतिपुर में जाते हैं, उधर प्रसाद का वितरण बहुत होता है। इधर श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बार संन्यास ग्रहण के बाद दो दिन या बहुत दिन तक या दो तीन दिन तक वो भूखे रहे, वो केवल चलते रहे कृष्ण के आवेश में, गंगा जहाँ राधा देश में, उधर चलते 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 नित्यानंद प्रभु छल किया उनके प्रति। छल करते हुए उन्होंने क्या किया, श्री चैतन्य महाप्रभु इधर उधर मोड़ के अद्वैत आचार्य को घर में लेके आए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जाना चाहते थे वृंदावन और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि वृंदावन आ गया, इधर देखो इधर यमुना है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु यमुना में जाके वो नहाने लगे, अस्तित्व में यमुना नहीं था, गंगा था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को जैसे छल किया नित्यानंद प्रभु ने, श्री चैतन्य बोला कि अरे आप कैसे बोल दिया कि यमुना है, ये तो गंगा है। तब अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बताया कि आप चिंता मत करो, श्री नित्यानंद प्रभु ने जो बताया वो सही बताया कि अस्तित्व में यमुना है, क्योंकि यमुना जो है गंगा के पश्चिमी दिशा से बहती है। तो आप जहाँ जिस गंगा के उस पश्चिमी तट के ऊपर नहा रहे हो, तो यमुना और गंगा ये दोनों का मिलन होता है प्रयाग में, क्योंकि गंगा का पश्चिमी दिक में यमुना पड़ता है। तो गंगा का जो मिलन होने के बाद जो गंगा है उसका जो पश्चिमी दिक है वो यमुना ही समझना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे भी करके आए और अद्वैत आचार्य घर में बहुत सुंदर प्रसाद ग्रहण किए और उधर सची माँ का उनके साथ मिलन होता है और निकल पड़ते। सची माँ का मिलन होने के बाद सची माँ रिक्वेस्ट करती है श्री चैतन्य महाप्रभु से कि आप अभी वृंदावन मत जाइए, वृंदावन जाएंगे तो आपके बारे में खबर नहीं मिलेगा और वृंदावन बहुत दूर भी है बंगाल से, और मैं ये भी नहीं चाहते हूँ कि आप नवद्वीप में रहो, क्योंकि नवद्वीप में रहेंगे लोग आपको अवहेलना करेंगे, अरे संन्यास देने के बाद भी देखो घर में ही बैठा है। तो ये अवहेलना भी मैं सह नहीं सकती हूँ, आपसे इतना दूर विरह का भी मैं सह नहीं सकती हूँ। सच्ची माने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि आप अभी जगन्नाथपुरी में निवास करो, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्लान चेंज किया और जगन्नाथपुरी वो पहुंचे। किनके साथ? नित्यानंद प्रभु, मुकुंद दत्ता, इन सब लोगों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, ये जगन्नाथपुरी पहुंचने वाले। रास्ते में बहुत सारे लीलाएं करते हुए किशोर गोपीनाथ पे जाते हैं, उधर माधवेंद्रपुरी का लीला सुनाते श्री चैतन्य महाप्रभु, और आगे चलते चलते वो जगन्नाथपुरी को पहुंचने से पहले नित्यानंद प्रभु को अपने संन्यास दंडा देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। बोलते हैं कि संन्यास दंड को अपने पास रखो, मैं अभी जाके अपना संध्या करके आता हूँ। तो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अपना संध्या करके वापस आए तो क्या हुआ, पूछे कि मेरा डंडा कहाँ है। नित्यानंद प्रभु ने बोला कि वो डंडा कौन सा डंडा, किसकी बात कर रहे हो आप? तो असल में क्या हुआ था, नित्यानंद प्रभु डंडे को तीन भाग करके फेंक दिए थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा आया, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं संन्यास डंडा को फेंक दिया। नित्यानंद प्रभु से बहुत गुस्सा होने के श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप पहले निकल जाओ या मैं पहले जाऊंगा, आपके साथ मुझे जाना नहीं जगन्नाथपुरी। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले निकल जाते आगे। तो ये जगन्नाथपुरी के अंदर जाने के लिए एक ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है, वो ब्रिज का नाम है अट्रनला ब्रिज। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्रिज से पहले ही एक जगह से उन्होंने श्री चैतन्य श्री जगन्नाथ मंदिर का जो चक्र है, जो मंदिर के ऊपर का चक्र है, उनका दर्शन किया। ऐसा बोला जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो चक्र होता है वो चक्र का दर्शन ही जगन्नाथ के दर्शन के बराबर है। वो देखते तुरंत तो बेहोश हो गए, फिर भी वापस होश में आके फिर चलने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर की ओर। वो अकेले अकेले चल रहे थे, जाके जैसे मंदिर के अंदर वो पहुंचे, इतना आतुरता था भगवान का जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, वो जगन्नाथ को दर्शन करते भागते भागते आगे गए और भावावेश में आके बेहोश हो गए। जैसे बेहोश हो गए तो उधर के जो वॉचमैन है, मंदिर अभी भोग से लगाने के समय है, मंदिर का पट बंद करना है, इधर क्या है, एक सन्यासी आके एक साधु आके सो गया है, क्या हो गया, वो एक वॉचमैन आके उनको मार के भगाने वाले थे। तो उस समय मंदिर को देखभाल करने वाले थे सारण भट्टाचार्य। वो आके एक वॉचमैन को बोलते हैं, रुको, ये तो एक महान महापुरुष लगते हैं। तो सारण भट्टाचार्य जैसे नजदीक जाके देखे तो श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर में ऐसा लग रहा था वो सांस नहीं ले रहे। तुरंत उन्होंने अपने असिस्टेंट से एक कॉटन मंगाया, रुई मंगा के उन्होंने नाक के पास रख के देखा तो थोड़ा सा सांस अभी चालू। तब श्री चैतन्य महाप्रभु सारण भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के इतना सुंदर शरीर को देख, इतना अद्भुत शरीर को देख के आकृष्ट हो गए। और साथ साथ में, क्योंकि सारण भट्टाचार्य बहुत विद्वान है और साथ साथ में वो है कौन, वो बृहस्पति के अवतार है, होने के नाते उन्होंने केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर का दर्शन करते उन्होंने समझ गया कि ये साधारण सा लक्षण नहीं है, ये महाभाव प्रकाश के लक्षण है। ये लक्षण केवल मनुष्य में प्राप्त नहीं होता है, ये दिव्य पुरुष या बहुत उच्च कोटि के भक्तों में भी इस प्रकार की भावना हो, इस प्रकार के भाव व्यक्त होता है। तो सारण भट्टाचार्य ने दो तीन और लोगों को बुलाए, बुला के श्री चैतन्य महाप्रभु को उठा के अपने घर लेके गए और उधर सुलाए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छी तरह से उनको सुलाए, उधर वो बेहोश थे। तो नित्यानंद प्रभु और मुकुंद दत्ता और उनके साथ ही जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे आ रहे थे, सभी लोग आए जगन्नाथपुरी मंदिर के सामने। तो उस समय कुछ लोग उनके मुख से बातें सुने कि एक बड़े सुंदर दिखने वाले एक सन्यासी आए और वो बेहोश हो गए और सारण भट्टाचार्य जो है उनको उठा के अपने घर लेके गए। तब सभी लोगों को मालूम पड़ा कि इधर ये जो है ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में चल रहा है। तब उसी समय गोपीनाथ आचार्य, गोपीनाथ आचार्य आते हैं। ये गोपीनाथ आचार्य असलियत में नवद्वीप के वासी है और सारण भट्टाचार्य के वो बहनोई लगते हैं, इज अ सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सारण भट्टाचार्य। और ये गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त वो बंगाल से वो परिचित थे। तो जैसे मुकुंद दत्त ने सारण गोपीनाथ आचार्य का दर्शन किया तो गोपीनाथ आचार्य से पूछते हैं कि हाल चाल पूछते हैं, कैसे हो, क्या है। तब गोपीनाथ आचार्य बोल रहे थे कि मैं आपसे ही याद कर रहा था, और तुरंत गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु खबर पूछते हैं। तब मुकुंद दत्त बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, इज ऑलरेडी जगन्नाथपुरी। हाँ, तो हमने ये सुना है कि अभी कोई सारण भट्टाचार्य करके है, वो गोपीनाथ इनको श्री चैतन्य महाप्रभु अपना घर लेके गए। तब गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं चलो मैं लेके जाता हूँ सार भट्टाचार्य के घर में, क्योंकि मैं सार भट्टाचार्य का मैं एक रिलेटिव हूँ। तब मुकुंदत्त और गोपीनाथ आचार्य दोनों और नित्यानंद प्रभु सभी लोग जितने भी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में आए थे बंगाल से, वो सब लोग गए सार भट्टाचार्य के घर। जैसे सब लोग गए तो उधर देखा श्री चैतन्य महाप्रभु अभी भी वो भावावेश में होके वो होश को बैठे, श्री जगन्नाथ जी का विरह में दर्शन से उत्पन्न हुआ जो होश भाव की वजह से। तब सार भट्टाचार्य बोलते हैं अपने पुत्र को, उनका पुत्र का नाम चंदनेश्वर, कि चंदनेश्वर तुम जाओ जाके इन सबको जगन्नाथ जी का दर्शन कराओ, पहले समुद्र का स्नान करा के जगन्नाथ जी का दर्शन कराओ, वापस आने तक तब श्री चैतन्य महाप्रभु का वो होश वापस आ जाएगा। तब गोपीनाथ आचार्य और जितने भी सब लोग हैं मुकुंद दत्ता नित्यानंद प्रभु सबको समुद्र तट में स्नान के लिए लेके गए, उसके बाद जगन्नाथ जी का दर्शन करा के फिर वापस जब आए तो अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु बेहोशी है। तब नित्यानंद प्रभु कृष्ण का नाम उच्चारण करते, हरि हरि उच्चारण करते, तब श्री चैतन्य महाप्रभु का होश वापस आता। जैसे होश वापस आया वो तुरंत वो भी हरि हरि करके जोर जोर से पुकारने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु। तब सार भट्टाचार्य का परिचय दिया गया था, सार भट्टाचार्य तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं क्योंकि वो एक वरिष्ठ सन्यासी है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु को सब मालूम पड़ता है। तब सार भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु का नहा धोने का सब कुछ अच्छा तरीके से व्यवस्था करते और गोपीनाथ आचार्य को बोले सार भट्टाचार्य उनका जगन्नाथ जी का दर्शन करा के और वापस लेके आना इधर महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए, उनका रहने का व्यवस्था जो है मेरा जो आंटी है मौसी है उनके घर में उनका व्यवस्था करा दूंगा। तब सभी लोगों को सुंदर प्रकार भोजन स्वयं सार भट्टाचार्य स्वयं परोसे, क्योंकि उस समय जगन्नाथ मंदिर को हेड उनको देखभाल कर रहे थे, तो स्वयं सार भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु और सारे जितने भी उनके अनुगामी सबको उनको बिठाए और प्रसाद परोसने लगे। परोस के श्री चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करके प्रसन्न करके उनको वापस श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने मौसी के घर में भेज दिए। तो अगला दिन या प्राय रोज इस प्रकार हो रहा था, श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे, लेकिन दर्शन श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ से कर रहे थे, गरुड़ स्तंभ से कर रहे थे। तब सार भट्टाचार्य बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, तो आप जब भी भगवान का बहुत नजदीक जाते हो तो इस प्रकार की भावावेश होता है, तो इसलिए आप गरुड़ स्तंभ इसलिए आप जब भी जाएंगे आप किसी के साथ में जाइए। तब श्री चैतन्य बोलते जरूर मैं किसी के साथ जाऊंगा, साथ साथ मैं गरुड़ स्तंभ से ही जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। तो इस प्रकार उन्होंने बताया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुकुंद दत्त और गोपीनाथ आचार्य जगन्नाथ जी का दर्शन करके श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करा के वो सार भट्टाचार्य से मिलने के लिए आते हैं। तो सार भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य और मुकुंदत से पूछते हैं, ये बहुत सुंदर सन्यासी है, महापुरुष के लक्षण उनके अंदर बहुत सारे प्रकट है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ इनका पूर्वाश्रम क्या है। पूर्वाश्रम मतलब सन्यास लेने से पहले उनका नाम क्या था, उनका जीवन कैसा था। असल में सन्यासियों का इस प्रकार के परिचय पूछा नहीं जाता है, लेकिन सिर्फ सार भट्टाचार्य वो जानना चाहते थे, उनके अंदर बहुत जिज्ञासा था। तब गोपीनाथ आचार्य वर्णन करते हैं, असल में इनका नाम है विश्वंबर मिश्रा, उनके पिताजी का नाम है जगन्नाथ मिश्रा, ये नीलांबर चक्रवर्ती के वो होते हैं। तब जैसे नीलांबर चक्रवर्ती का नाम सुनते हैं सार भट्टाचार्य बोलते हैं, अरे नीलांबर चक्रवर्ती और मेरे पिताजी खास मित्र हैं, तो ये तो नीलांबर चक्रवर्ती मेरे चाचा के बराबर है, यानी अगर श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे नीलांबर चक्रवर्ती के पोते हैं तो मेरा एक कजिन लगते हैं, मेरे नेव्यू लगते हैं, मेरा भांजा लगते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार सार भट्टाचार्य बात करने लगे और बाद में जैसे गोपीनाथ आचार्य वर्णन किए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अभी दीक्षा लिया है, तो किन से दीक्षा लिया है, केशव भारती से दीक्षा लिया है। जैसे सार भट्टाचार्य केशव भारती का नाम सुनते हैं बोलते हैं कि वो भारतीय संप्रदाय में दीक्षा लिए हैं। वैसे तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत नम्र लगते हैं, क्योंकि वो सन्यासी होने के बाद भी मुझे जगत गुरु के रूप में स्वीकार किया उन्होंने। जनरली सन्यास जो है वह सारे आश्रम में श्रेष्ठ है, मैं तो एक साधारण सा गृहस्थ हूँ। जब मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया उन्होंने वापस मुझे बोलते हैं कि मुझे गुणगान करने लगे, मुझे मुझे बोलने लगे कि आप तो वेदांत के प्रवक्ता हो। तो इस प्रकार ये सन्यासी के अंदर बहुत सारा नम्रता है। और ये भी नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु केशव भारती से दीक्षा लेने के बाद भारतीय संप्रदाय में संन्यास ग्रहण करने के बाद भी उनका नाम अभी भारतीय स्वीकार नहीं किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। संन्यास के बहुत सारे नाम होते हैं, दो सिस्टम है संन्यास के। एक है अष्टत्रशत सिस्टम जो निम्बार्काचार्य के द्वारा स्थापित है, और साथ साथ में दशविध संन्यास जो सिस्टम है शंकराचार्य के द्वारा प्रचलित है। ये दशविध संन्यास में अलग 10 प्रकार के सन्यासी होते हैं, उनकी जो साधना की विधि के अनुसार उनका 10 प्रकार का नाम दिया जाता है। किसी को आनंदा, किसी को भारती, किसी को अरण्य, किसी को सरस्वती, इस प्रकार के नाम दिया जाता है। 10 प्रकार के नाम है, कोई अलग अलग प्रकार के तीर्था, कोई इस प्रकार के नाम आते हैं। तो इस प्रकार के जो भारती जो नाम है, इतना श्रेष्ठ सन्यासियों के वर्ग में नहीं आते भारती। लेकिन सरस्वती, ये तीर्था, ये सब जो है वो वरिष्ठ सन्यासियों के अंतर्गत आता है। तो ये तो भारती से लिया। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु केशव भारती भारती संप्रदाय में दीक्षा लेने के बाद भी वो चैतन्य नाम को बदली क्यों नहीं किया? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सारे जगत को ये बताना चाहते हैं क्योंकि कि हम एक सेवक है, यानी भगवान के दास है। ब्रह्मचारी का कर्तव्य होता है कि सन्यासी का सेवा करना। मायावाद के अनुसार, मायावाद सिद्धांत के अनुसार, जैसे कोई व्यक्ति सन्यास ग्रहण कर लेता है इसका मतलब वो मुक्त हो गया और अपने आप को नारायण समझता है और दूसरा सन्यासी को भी नारायण बोलने लग जाता है। इसलिए बोलते नमो नारायण, नमो नारायण। हाँ, तो उनका मतलब क्या है? वो साक्षात भगवान नारायण को प्रणाम नहीं कर रहे, बल्कि वो सोच रहे कि अभी आप नारायण बन गए हो, क्योंकि सन्यास ले लिए तो नारायण बन गए आप, तो इसलिए आपको प्रणाम करता, नारायण बन गए। तो इसलिए जब सारू भट्टाचार्य और प्रकाशन श्री चैतन्य महाप्रभु मुलाकात हुआ था, तब सारू भट्टाचार्य प्रणाम करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते कि नमो नारायण। जैसे नमो नारायण करके सारू भट्टाचार्य प्रणाम करते, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते? प्रणाम करते, कृष्ण मतिरस्तु, इस प्रकार वो वापस आशीर्वाद देते हैं। तो जैसे सारू भट्टाचार्य बात को सुने तब मालूम पड़ा कि ये जो सन्यासी है ये वैष्णव सन्यासी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सारू भट्टाचार्य बोलते हैं, ये जो सन्यासी है बहुत सुंदर है, बहुत युवक है। मुझे यही चिंता हो रहा है कि अपना सन्यास धर्म खो ना बैठे, क्योंकि युवावस्था में बहुत सारा काम इच्छा होता है और सन्यास धर्म को पालन करना है। तो जब तक वो वेदांत का अध्ययन अच्छी तरह से नहीं करता, सन्यास धर्म को पालन करना बहुत मुश्किल है। तो ये सन्यासी बहुत नौजवान है और साथ साथ में सुंदर भी है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उनको वेदांत पढ़ाऊँ और वेदांत का शिक्षा देने के बाद उनको एक भारतीय संप्रदाय नहीं बल्कि इसके उच्च कोटि जो सरस्वती संप्रदाय है उनके अंतर्गत मैं और एक दीक्षा प्रदान दे सकता हूँ। सारू भट्टाचार्य जैसे इस प्रकार बातें कहे, गोपीनाथ आचार्य को बहुत गुस्सा है। सारू भट्टाचार्य को बोले, आप क्या समझते हो? जो आप जिन पुरुष के बारे में बात कर रहे हो श्री चैतन्य महाप्रभु, वह साधारण सा व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। ये वर्णाश्रम धर्म से परे है। इनको आप साधारण सा ये प्रकार का सन्यास, वो प्रकार का सन्यास, इन सब चीजों से उनको लेना देना नहीं है। जैसे सारू भट्टाचार्य ने ये बातों सुना तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि आप ऐसा मजाक क्यों करते हो? हम सब जो भी है ये तर्कवादी है, तर्क के द्वारा हम हर चीज को स्वीकार करते हैं। और सारू भट्टाचार्य के जितने भी शिष्य वो भी बोलने गए, नहीं, हम तर्क के द्वारा समझाए कि ये भगवान है, ये हम श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है करके हम स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि शास्त्र में वर्णन किया गया है कि भगवान जो है केवल 3 युगों में प्रकट होते हैं, इसलिए उनका एक नाम है त्रियुग। तब गोपीनाथ आचार्य को बहुत गुस्सा के बोलते हैं कि आप भगवान को कभी नहीं समझ सकते हो। साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु आपके घर में आए, आपके हाथ से प्रसाद स्वीकार किए, इतना करने के बाद भी सारू भट्टाचार्य आप एक ड्राई मेंटल स्पेक्युलेटर हो, एक बहुत सूखा दार्शनिक हो, तर्क के द्वारा भगवान को समझना चाहते हो, ये कभी नहीं होगा। आप को भगवान का कृपा नहीं मिलेगा, जब तक भगवान का कृपा नहीं मिलेगा तब भगवान को नहीं समझा जा सकता है। तो इसलिए भगवान स्वयं आपके घर में आए लेकिन फिर भी आप भगवान है करके नहीं समझ पाए, तो ये इसलिए आपका दुर्भाग्य है। सार मोटाचारी बोलते हैं गोपीनाथ आचार्य को, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, जरा आप साबित तो करो कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है। कि आप बोल रहे हो कि ये वो भगवान है, भगवान का कृपा जब तक नहीं मिलेगा जब तक भगवान को समझा नहीं जा सकता। आप भगवान भागवतम के बहुत सारे श्लोक भी कोट कर रहे हो, था आप ते देव पदाम्बुज दया द्वया लेशानुग्रीत जानादि तत्व भगवान महिन्नो, भगवान का महिमा, भगवान को जब तक उनका कृपा नहीं मिलता तब तक नहीं समझ सकते हो। आप बता रहे हो ठीक है मुझे तो भगवान को कृपा नहीं मिला, लेकिन ऐसा क्या सबूत है कि आपको भगवान का कृपा मिला? गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि हमको जरूर भगवान का कृपा मिला है, क्योंकि मैंने स्वीकार किया है श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है करके। तो इस प्रकार बहुत संवाद चलते हुए गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि आप बोलते हो कि ये भगवान का एक नाम है त्रियुगा, कलयुग में कोई अवतार नहीं होता है, लेकिन ध्यान से सुनो श्रीमद् भागवतम और महाभारत का कथन सुनो। भागवतम के अनुसार एक श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधशा, और श्रीमद् महाभारत का सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनागति संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति पुरायण, ये दोषों को कोट करने के बाद जहाँ दसवें स्कंद में गर्ग मुनि के द्वारा उच्चारित जो श्लोक है, जब कृष्ण प्रकट हुए गर्ग मुनि आके वो बताते हैं कि पहले यही जो पुत्र यही आपका जो लड़का है सफेद रंग में लाल रंग में और पीले रंग में प्रकट हुए, अभी काले रंग में प्रकट हुए करके गर्ग मुनि बताते हैं। तो अभी भगवान के चार युगों में चार अवतार हो गए क्योंकि अभी चार रंग का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार गोपीनाथ आचार्य शास्त्रों के कथन से ये स्थापित करते हैं कि सारमठाचार्य को कि कृष्ण जो है श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी सारमठाचार्य ये मानने के लिए तैयार नहीं थे और बोलने लगे अरे बहुत बड़ी बात ही बड़े बड़े बातें कर रहे हो, अभी जाओ और जरा आप महाप्रभु को बोलो कि मैं तैयार हूँ उनको वेदांत के ऊपर शिक्षा देने के लिए। तब गोपीनाथ आचार्य को बहुत बुरा लगा, साथ साथ में मुकुंद भट्ट भी बैठे थे, गोपीनाथ आचार्य का जो शास्त्रों का प्रमाण देखकर उनको बहुत आनंद आया, लेकिन साथ साथ में सारमठाचार्य का जो श्री चैतन्य महाप्रभु का विचार है वो उनको देख के बहुत सहन नहीं हो पाया। तब मुकुंद दत्त और गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए और ये सब बातें उनके सामने प्रस्तुत किए, तो महाप्रभु ने बोला कि सारमठाचार्य जो है मेरे पिताजी के बराबर है, वो मेरे प्रति वात्सल्य को की भावना बना के रखे, वो चाहते है कि मेरा संन्यास धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि मुझे वेदांत सिखाना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है उसकी उनकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत नम्रता से इन बातों को इन लोगों को सांत्वना देते हैं। तो अगला दिन श्री चैतन्य महाप्रभु सारमठाचार्य के घर में आते हैं और सारमठाचार्य अपने आप को एक नीचे के स्थान में बैठते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, सन्यासी को ऊंचे स्थान में बैठाते हैं और बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को अभी आप मैं निवेदन करता हूँ कि आप मुझसे वेदांत सुनिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया तो सुनने का, तो सारमठाचार्य वे श्री चैतन्य महाप्रभु को एक हफ्ते तक फॉर वन वीक 7 दिन उन्होंने वेदांत सिखाया। शंकराचार्य के भाष्य के ऊपर शारीरिक भाष्य के ऊपर आधारित होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कंटिन्यूसली फॉर 7 डेज श्री चैतन्य महाप्रभु सुनाया। श्री चैतन्य महाप्रभु 7 दिन तक ऊ भी नहीं आ भी नहीं कुछ कोई बात शब्द ही नहीं निकालते। सारमठाचार्य 7 दिन के बाद परेशान हो गया, बोले कि श्री चैतन्य महाप्रभु को कि आप कुछ तो प्रश्न पूछते हो, आप समझ रहे हो कि नहीं मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है, अगर पूरा समझ रहे हो तो कुछ तो कुछ तो बोलना चाहिए, आप आ भी नहीं करते वो भी नहीं करते हो, क्या हो रहा है? तब श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं तो एक मूर्ख हूं, मैं वेदांत को कैसे समझ सकता हूँ, मेरे पास कोई योग्यता नहीं वेदांत को समझना। सारमठाचार्य बताते हैं कि कम से कम तो पूछना चाहिए, जहां जहां समझ में नहीं आता तो बोलना चाहिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वेदांत सूत्र को तो मैं समझता हूं लेकिन आप जो बोल रहे हो उसको नहीं समझ रहा हूं। तो जैसे ही बात बोला सारमठाचार्य को एक हार्ट अटैक जैसा आया, क्या इसका मतलब क्या है आपका, आप वेदांत सूत्र को समझते हो और मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं समझ रहे, इसका मतलब क्या है मैं जो बोल रहा हूं वेदांत सूत्र नहीं है? जैसे सारमठाचार्य बात को सुना तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताए तो इसका मतलब क्या है कि वेदांत सूत्र का सही भाष्य क्या है, सही मतलब क्या है? तब श्री चैतन्य महाप्रभु बताते सारमठाचार्य को आप बुरा मत मानो तो मैं एक बात कहूं कि आप जो भाष्य के ऊपर आधारित होकर जो वेदांत को समझा रहे हो वो सदासत गलत है, उसके अंदर बहुत सारे त्रुटियां हैं। तो जैसे उन्होंने बात बताया सार भट्टाचार्य को, बहुत दिल में दिल का दौरा जैसा आ गया, हार्ट अटैक जैसा आ गया, तो स्थान हो गए। तो और आगे कहो अगर ऐसा है तो, तब श्री चैतन्य महाप्रभु एक के बाद एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक वेदांत सूत्र को ऊपर टीकाएं करते हुए वैष्णव सिद्धांत को स्थापना करते हुए सार भट्टाचार्य को एकदम खंडन कर देते। तो ऐसा जब कोई इतना साल तक इतना बड़े विद्वान साक्षात बृहस्पति के अवतार, जहाँ सारा भारत में सार भट्टाचार्य का ख्याति था, अभी उनका श्री चैतन्य महाप्रभु के संपर्क की वजह से उनका पूरा परिवर्तन कैसे हुआ हम देखते हैं। सबसे पहला श्री चैतन्य महाप्रभु आर्ग्यू करते हैं, वेदांत सूत्र जो है वो 108 उपनिषदों का सार है। वेदांत सूत्र इज अ समरी ऑफ 108 उपनिषद्स। The revelations of the Upanishads in the Vedanta Sutra should be understood through the Abhidhya Vritti, direct evidence. The indirect method is useless. तब श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि सार भट्टाचार्य को आपने जो लक्षण वृत्ति को अपनाया है, ये लक्षण वृत्ति मतलब क्या है, कोई एक शब्द है उस शब्द के लक्षण के द्वारा एक वस्तु को पहचानना। तो अस्तित्व में वेदांत सूत्र को इस प्रकार लक्षण वृत्ति के द्वारा नहीं पहचाना जा सकता, नहीं जाना जा, नहीं समझा जा सकता है। उसको अविद्य वृत्ति यानी वेदांत सूत्र जो है वो सूर्य के प्रकाश के बराबर है। सूर्य को देखने के लिए आपको टॉर्च लाइट की आवश्यकता नहीं है, कहाँ है देखो सूर्य, नहीं वो स्वयं प्रकाशित है। सूर्य जो है वो अपना प्रकाश के द्वारा वो स्वयं व्यक्त करता है। तो वैसे ही ये वेदांत सूत्र सूर्य के समान है। तो हमारा जो दोष है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और अति है हिस्टोरिकल एविडेंस, ये और शब्द, ये भले ही चारों प्रमाण है लेकिन हमको ये शब्द प्रमाण को यथारूप में स्वीकार करना चाहिए। और ये शब्द प्रमाण में भले ही ऐसा लगे देयर आर सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स, सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी इंस्ट्रक्शंस विद इन द वेदास कैन नॉट बी एडजस्टेड बाय स्पेकुलेशन, दे मस्ट बी एक्सेप्टेड दे आर। अब ऐसे पता लग सकता है कि ये वेदों में परस्पर विरोधास्पद बातें या विरोधास्पद तत्व का विचार किया गया है या बताया गया है। कहीं बताया गया कि भगवान साकार है, कहीं बताया गया भगवान निराकार है। भले ही वेदों में इस प्रकार बताया गया, दोनों को यथारूप में स्वीकार करना चाहिए। आपकी वेदों के शब्दों को तोड़ मोड़ के इसको अलग अलग प्रकार के जो ग्रामर या व्याकरण के द्वारा इन शब्दों का लक्षण वृत्ति को आपको स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलते हैं कि द इनडायरेक्ट मेथड चैलेंजेस द अथॉरिटी ऑफ द वेदिक इंजंक्शंस। स्पेक्युलेटर्स कवर द सन लाइक स्टेटमेंट्स ऑफ द वेदास विद अ क्लाउड। जो आप जैसे जो स्पेक्युलेटर्स है, जो मानसिक दार्शनिक है, क्या करते हैं वो सूर्य को जिस प्रकार बादल ढक देता है, तो वैसे ही आप लोग वेदों का वास्तविक और असली मतलब को, क्या असली मीनिंग को वो आप सब लोग ढक देते हैं। जैसे कि भगवान वेदों में वर्णन हुआ है, भगवान का स्वरूप और सुंदरता का वर्णन हुआ है, आप क्या कर देते हो, बोलते हो कि यही भगवान जो है वो निराकार, इस प्रकार बोलते हो। जो ब्रह्म करके शब्द आया है उपनिषद में वो कौन है, वो है भगवान। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ को है भगवान, षडैश्वर्य पूर्ण अनुग समान। ये ब्रह्म शब्द जहां भी उपनिषदों में आता है ये किसको सूचित कर रहा है, अस्तित्व में कृष्ण को सूचित कर रहा है जो षडैश्वर्यों से पूर्ण है। तो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु एकदम कड़क बातों से इस प्रकार की स्पष्ट रूप में ये सिद्धांत को स्थापना कर रहा है कर रहे हैं, सार भट्टाचार्य को एकदम पूरा हृदय हिल रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा, उनको मुंह होके देख रहे, दंग होके देख रहे कि ऐसा व्याख्या को उन्होंने कभी सुना भी नहीं। बोले कि सम सेजेस हैव डिस्क्राइब्ड हिम इम्पर्सनली फ्रॉम द मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू टू एस्टैब्लिश अ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। तो बोलते हैं कि कुछ सेजेस, कुछ लोगों ने भगवान को स्थापना किया है या ब्रह्म को स्थापना किया निराकार के रूप में, ये इसलिए स्थापना किए है ताकि ये जानने के लिए भगवान का एक आध्यात्मिक रूप है। जब बोला जाता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, इसका मतलब यह है कि उनके पास कोई भौतिक रूप नहीं है। उसके बाद बोलते हैं कि बट द तैत्तिरीय उपनिषद डिस्क्राइब सुप्रीम लॉर्ड द परफॉर्मर। तब तैत्तिरीय उपनिषद में बोला गया है कि वो कुछ करते हैं, सही क्षति करता, वो हर चीज वो करते हैं। अगर भगवान कुछ करते हैं यानी वो उनके पास करने की कुछ अवयव होना चाहिए, देयर शुड बी समथिंग थ्रू व्हिच ही डज, तो उनके पास विशेष है। और साथ साथ में चांदोग्य उपनिषद और आयतीय उपनिषद में कहा गया है कि भगवान ने इस प्रकृति के ऊपर उन्हें नजर डाला, साइक्षता, अगर नजर डाला तो उनके पास आंख होना चाहिए। आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि भगवान के पास कोई इंद्रिया नहीं है, सर्वेंद्र विवर्जितम, आप ऐसा क्यों बोलते हो? और पुराण, पुराणस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास। ये मायावादियों का सबसे बड़ा दोष ये है, वो बोलते हैं कि हम पुराणों को स्वीकार नहीं करेंगे, हम ओरिजिनल फोर वेद है ऋग यजुर् साम अथर्व इनको स्वीकार करेंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपको अगर सच में वेदों को समझना है पुराणों के द्वारा ही समझा जा सकता है, पुराणों के बिना वेदों को क्लियरली समझा नहीं जा सकता है। अपाणी पादो, जैसे पिताश्री अवतार में वर्णन किया गया, अपाणी पादो मतलब उनके पास कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है। अपाणी पादो का वास्तविक मतलब क्या है? उनके पास कोई बौद्धिक हाथ नहीं, कोई भौतिक पैर नहीं है। इसका मतलब है उनके पास आध्यात्मिक हाथ आध्यात्मिक पैर है। The Lord's potency is called the chit shakti which contains eternity, knowledge and bliss. तो भगवान जो है उनके पास शक्तियाँ हैं। आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि भगवान शक्तिहीन है? उनके पास शक्तियाँ हैं। He is having unlimited potencies. और चित शक्ति also manifests as विष्णु शक्ति and क्षेत्रज्ञ शक्ति and माया शक्ति। तो ये विष्णु पुराण का बहुत एक महत्वपूर्ण श्लोक है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञ कृता परा विद्या कर्म संज्ञा तृतीया शक्ति विश्यते, यानी भगवान के तीन प्रकार की शक्ति, वो है अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति है। और इस बात को वर्णन करते भगवान बोलते हैं द लॉर्ड एंड लिविंग एंटिटीज कैन नॉट पॉसिबली बी द सेम बिकॉज द लिविंग एंटिटी कैन फॉल अंडर द कंट्रोल ऑफ माया शक्ति वेयर एज द लॉर्ड इज द ओरिजिनल कंट्रोलर ऑफ माया। तो मायावादी लोगों के अनुसार क्या है? जीव और भगवान एक ही है। हम अभी भूल गए हम भगवान है करके, जैसे अज्ञान हट जाएगा तो हम सोचे हम भगवान बन जाएंगे। तो इधर श्री चैतन्य बोलते हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं कि जीव और भगवान एक ही है? अगर भगवान जो है या ब्रह्म या जीव ब्रह्म है तो ये अविद्या के अंतर्गत क्यों आया और कैसे आया, इसका कोई वर्णन ही नहीं है। इफ ब्रह्मन, इफ जीवा इज ब्रह्मन, हाउ डिड दैट ब्रह्मन कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया? अगर माया ब्रह्म के ऊपर प्रभावित कर सकता है तो ब्रह्म से शक्तिशाली माया है, तो माया माया नहीं, वो माया ब्रह्म हो जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार सारमटाचार्य के सर के ऊपर एक एक करके हैमर किया जा रहा है, हथौड़ा लेके एकदम ये मार रहे ये स्टेटमेंट्स के द्वारा। द लिविंग एंटिटी डिपेंड्स अपॉन द लॉर्ड फॉर द डिलीवरेंस फ्रॉम माया। मुंडक उपनिषद के अनुसार जो जीव है वो भगवान के ऊपर हमेशा निर्भर करता है। तो इसका मतलब है भगवान और जीव के अंदर जरूर अंतर है। द मायावादीज आर मोर डेंजरस देन द बुद्धिस्ट। जैसे ये स्टेटमेंट सुना सारमटाचार्य एकदम पूरा एकदम दंग हो गए कि जैसे क्षेत्रनाथ बोलते हैं कि आप जो मायावादी हो, कौन हो आप लोग? आप बौद्ध लोगों से गए गुजरे हो, कम से कम बौद्ध लोग क्या करते हैं, हम वेदों को नहीं मानते, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आप मायावादी क्या बोलते हो? हम वेदों को स्वीकार करते हैं लेकिन वेदों का गलत मतलब को मानते हैं, गलत मतलब को प्रचार करते हैं। तो बौद्ध लोग कम से कम बोलते तो है वेदों का नहीं मानते, लेकिन आप वेदों का गलत मतलब को बताते हो, तो इसलिए आप जो है ये मायावादी लोग, आप लोग ये बुद्ध लोगों से गए गुजरे हो। मायावादी स्पॉइल वेदांत सूत्र स्कॉलरशिप विद स्पेक्युलेटिव असर्शंस। मायावाद एक्सेप्ट्स विवर्तवादा एंड व्यासस एक्सप्लेनेशन ऑफ परिणामवाद। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, विवर्तवाद और परिणामवाद क्या है, ये बहुत लंबा सोड़ा चर्चा है, लेकिन संक्षिप्त में बताया जाए, हर एक दार्शनिक को ये वर्णन करना होता है कि जगत का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो मायावाद स्कूल के अनुसार वो बोलते हैं कि ये जगत ही भगवान है, भगवान जो है जगत बन गए, उसको बोलते हैं कि विवर्तवाद। लेकिन हम क्या बोलते हैं, वैष्णव लोग क्या बोलते हैं, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार शक्ति परिणामवाद है। हमारा वाद क्या है, व्हाट इज आवर फिलॉसफी, शक्ति परिणाम, भगवान जो है उनसे शक्तियां उत्पन्न होता है, वो शक्तियां जो है वो परिवर्तन होता है, भगवान परिवर्तन नहीं होते बल्कि भगवान से उत्पन्न हुआ शक्तियां परिवर्तन होते, इसलिए हमारा शक्ति परिणामवाद, शक्ति परिणामवाद बोला जाता है। जैसे हम पहला दिन भी इस बात को बताया था कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हो, आप बोलेंगे हमारे कृष्ण वाले हैं, ये तो बहुत सादा सा जवाब हो गया, लेकिन टेक्निकल जवाब देना है, आपका परिचय देना है। तो जिस प्रकार भौतिक तरीके से हम अपना परिचय देते हैं कि हम ये परिवार के हैं, हम इस जात के हैं, ऐसा है, हम इस कास्ट के हैं, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अंतर्गत ये है, इस प्रकार परिचय दिया जाता है भौतिक दृष्टिकोण। वैसे हमारा संप्रदाय या ब्रह्म मत्व गौड़ी संप्रदाय से भले ही जुड़े हैं, अगर आपका परिचय अगर माना पूछा जाए तो इन द फिलोसॉफिकल सर्कल्स, दार्शनिकों के बीच में आपको ये दो बातें बताना होगा। हमारा पंथ वैरागी पंथ है और हमारा दर्शन शक्ति परिणामवाद है। तब तुरंत आप कौन हो, क्या है आपका पूरा फिलॉसफी, दूसरा व्यक्ति या जो जानकार व्यक्ति है वो पंडित विद्वान व्यक्ति समझ जाएगा। वी शुड से वी बिलोंग टू द वैराग्य पंथ, दूसरा है और फिलॉसफी हमारा दर्शन क्या है, शक्ति परिणामवाद। ओ समझ जाएगा, ठीक है, आप हरे कृष्ण वाले हो। तो दिस इज द विवर्तवाद, आप जो रॉन्ग एक्सप्लेनेशन देते हो विवर्तवाद करके, भगवान जो है वो ब्रह्म जो है जगत बन गया। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है, जगत को ही भगवान बना के पूजा करो, ये मायावाद का कंसेप्ट है। चीफ साउंड रिप्रेजेंटेशन, तो बाद में बताते हैं कि महावाक्य, ये वेदों में महावाक्य करके होता है। वेदों का वास्तविक महावाक्य क्या है, ओम, उसको महावाक्य बोला जाता है। दैट इज द ग्रेटेस्ट, द टॉप मोस्ट सिलेबल इन द होल वेदा, सारे वेदों में सर्वोच्च जो शब्द है वो ओम है। लेकिन शंकराचार्य ने क्या किया, उस ओम को बाजू में रखा और बोला कि तत्वमसि ये महावाक्य है, सर्वम कलुयुगम ब्रह्मन ये महावाक्य है, और बोला सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म ये महावाक्य है। ये इस प्रकार उन्होंने ये इन चीजों को महावाक्य के रूप में माना। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, तो सर्वम कलुयुगम ब्रह्मन, ये चार चीजों को उन्होंने महावाक्य के रूप में माना। लेकिन ओम को उन्होंने बाजू में रखा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सारमठाचार्य को बता दें कि the chief sound representation of the Lord in the Vedic text is Omkara, you have forgotten it। महावाक्य जो है ओमकार के रूप में स्वीकार करना चाहिए, तुमने उसको स्वीकार किया। सारमठाचार्य tried to refute the Lord with so many arguments, सारमठाचार्य ने बहुत सारे तार्किक चीजों को प्रस्तुत किया, लेकिन हर चीज को जैसे सारमठाचार्य कुछ बात बताते तुरंत उनको खंडन कर देते श्री चैतन्य महाप्रभु। तब श्री चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य का परिचय देते हैं पद्म पुराण के ऊपर आधारित होते हुए, बोलते हैं कि आप जो शंकराचार्य शंकराचार्य बोल रहे हो कौन है, वो साक्षात शिवजी है। और शिवजी है कौन, वो कृष्ण के आज्ञा के ऊपर आके उन्होंने ये मायावाद भाष्य को रचना किया, जो अस्तित्व में गलत सिद्धांत है। अस्तित्व में देखा जाए शिवजी का वास्तविक परिचय क्या है, वो कृष्ण के दास है। तो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पद्म पुराण का कथन लेके शिवजी का शंकराचार्य का वास्तविक परिचय बताया, सारमठाचार्य उस कम्प्लीटली स्टंड, वो एकदम दिग्बंधित, वो एकदम उनका कुछ बोलने को नहीं हो रहा था, स्तंभित हो गए, वाज कंप्लीटली स्टंड। देन ही आस्क्ड द लॉर्ड टू एक्सप्लेन द आत्मराम वर्ड्स। तब सारमठाचार्य बोलते हैं ठीक है, आप अभी ये आत्माराम श्लोक के ऊपर आप व्याख्या कीजिए। तब राम सारमठाचार्य को श्री चैतन्य बोलते हैं कि ठीक है, मैं तो वर्णन करूंगा ही, लेकिन आप पहले वर्णन करो। तो इस प्रकार सारमठाचार्य जो है अपना पूरा अलग अलग तर्कों के ऊपर आधारित होकर उन्होंने नौ प्रकार उस वर्ष उस आत्माराम श्लोक है, आत्मारामस्त मुनयो निर्गंता भुरुक्रमे कुर्वन्ते हेतु भक्ति, इस श्लोक के ऊपर उन्होंने व्याख्या किया। तो बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर से उन्होंने आत्माराम, आफ्टर प्रेजिंग सारमठाचार्य इज लर्निंग द लॉर्ड गेव 60 मीनिंग्स टू द वर्ड्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति के अनुसार उन्होंने 60 मतलब या 60 प्रकार उस श्लोक को आत्मारामस्य मुनयो निर्गंता पुरुक्रमे कुर्वन्ति हेतुं भक्तिं, जो भागवत का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, उनके ऊपर उन्होंने व्याख्या किया। तब सारमठाचार्य का हृदय परिवर्तन होता है। भट्टाचार्य जो है रात श्री चैतन्य महाप्रभु का पांडित्य को देख के बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु आप कौन हो, साक्षात कृष्ण हो करके स्वीकार किए और वो प्रणाम किए। तब उन्होंने बोला कि मैं अस्तित्व में बहुत बड़ा अपराधी हूँ। आई एम ही देन कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ ग्रेट ऑफेंडर एंड फेल एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड रिवील्ड हिज विष्णु फॉर्म टू सारमठाचार्य। सबसे पहले सारमठाचार्य को उन्होंने विष्णु का स्वरूप दिखाया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, बाद में स्वयं अपना कृष्ण का स्वरूप सारमठाचार्य को दिखाया। बाद में जैसे श्री सारमठाचारी इन स्वरूपों को देखने के बाद सारमठाचारी सौ श्लोक सार्वभौम शतक ऐसा बोला जाता है, सौ श्लोक को उच्चारण किया, तब श्री चैतन्य महाप्रभु सारमठाचारी को आलिंगन किए और दोनों आनंद विभोर के नाचने लगे। तो अगला दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए, दर्शन करके खूब सारा महाप्रसाद लेके श्री जगन्नाथ मंदिर से अभी पहुंचे सारमठाचारी के घर। जैसे दरवाजा खटखटाए तुरंत सारमठाचारी अभी सोए हुए थे उस समय, तो जैसे दरवाजा खटखटाए सारमठाचारी ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु का आवाज सुना तो तुरंत उठ के कृष्ण कृष्ण बोल के उठे, उठ के तुरंत आके उन्होंने दरवाजा जैसे खोला तो श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते हैं, तुरंत उनको अंदर निमंत्रण दिया, चटाई बिछा के उनको बैठाया, बैठाया श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उनके हाथ में जो जगन्नाथ प्रसाद है सारमठाचारी को दी। सारमठाचारी वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करते है, वो प्रसाद को तुरंत उन्होंने सेवन किया। तो एक सारमठाचारी कौन है? एक बड़े वैदिक ब्राह्मण है, इतने महान ब्राह्मण है और इतने विद्वान पंडित है, वर्णाश्रम को इतना कड़ाई से पालन करते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं अभी? जगन्नाथ प्रसाद जैसे हाथ में पहुंचा, वो अभी तक उन्होंने शुद्धिकरण का कोई शौच नहीं किया था, पूरा हाथ मुंह नहीं जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने जगन्नाथ प्रसाद का सेवन किया और कुछ लोगों को उच्चारण किए कि जगन्नाथ प्रसाद कहीं से भी आया जाए, सूखा हो या बहुत या पुराना हो, कहीं बहुत दूर से भी लेके आए हो या और भले ही शौच क्रिया अभी तक किया नहीं हो या मुंह हाथ धोने की या नहाने या नहाने भी नहीं हो, कोई भी गंदी अवस्था में भी क्यों ना हो, उस अवस्था में जगन्नाथ प्रसाद मिलते हैं उसको सेवन करना चाहिए। शास्त्रों से जगन्नाथ प्रसाद का महिमा का कोटेशन करते हुए सारमठाचारी इस जगन्नाथ प्रसाद को स्वीकार किए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि श्री सारमठाचारी ने इस महाप्रसाद को बहुत आदरपूर्वक स्वीकार किया, तब श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, सारमठाचारी को गुणगान करने बोलने लगे कि तुम्हारा जो ये विश्वास है महाप्रसाद में, जैसे हम लोग महाप्रसाद ग्रहण करने के पहले इस श्लोक बताते हैं, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नहीं जायते, जिनको इन तीन चीजों में विश्वास नहीं है उनका पुण्य स्वल्प, यानी केवल उनका पूरा जीवन पापमय जीवन है, उनकी कोई पुण्य है ही नहीं। कहा क्या क्या चीजें? वो तीन चीजें नाम ब्राह्मण महाप्रसाद, भगवान का नाम में, महाप्रसाद में और ब्राह्मणों में यानी वैष्णव भक्तों में, इन तीन लोगों में अगर किसी का विश्वास नहीं है इसका मतलब क्या है? वो पापी व्यक्ति है। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु सारमठाचारी की इस भावना को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद सारमठाचारी गोपीनाथ आचार्य के पूरा साष्टांग प्रणाम करके वो बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा मेरे ऊपर इसीलिए हो पाए क्योंकि आपके वजह से, मैं आपके संबंधी हूँ और आप श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हो, इसलिए एक भक्त का एक संबंधी होने के नाते मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिला, नहीं तो मैं इतना मेरा हृदय पत्थर के जैसा हृदय है, तर्क मेरा सिद्धांत मेरा तर्क के द्वारा मैं भगवान को जानने के लिए प्रयास करता था, मैं आई वाज अ ड्राई आर्गुमेंट इनटू फिलोसोफर, तो लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा मुझे केवल आपके वजह से प्राप्त हुआ। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सारमठाचारी जो है गोपीनाथ आचार्य को एक माध्यम मान रहे कि उनका कृपा प्राप्त करने का, वो देख के बहुत प्रसन्न हो गए। अस्तित्व में हम भक्तों को भी देखना चाहिए कि भगवान का कृपा जो है वो भक्तों के द्वारा ही प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान भक्त जो है भगवान के बहुत करीब और नजदीक रहते हैं। तो अगर किसी भी तरीके से हम करा भक्तों के संबंध हो जाता है तो भगवान का कृपा हमारे ऊपर हो जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सारमठाचार्य का प्रति कृपा क्यों हुआ? क्योंकि वो गोपीनाथ आचार्य के संबंधित थे, ही वाज वेरी क्लोज टू गोपीनाथ आचार्य, तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वेरी मच प्लीज, भगवान भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे अगर कोई भक्त ये सोचता है कि भगवान का कृपा जो है मुझे इस भक्त की वजह से मिला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तब जगन्नाथ प्रसाद सारमठाचारी सेंट टू रिटर्न वर्सेस। तब एक दिन श्री सारमठाचारी जो है दो श्लोकों को वो रचना करके महाप्रसाद को श्री चैतन्य महाप्रभु के पास भेजते हैं। तो बीच में क्या किया, मुकुंद दत्त ने वो दो श्लोकों को लिखे दीवार के ऊपर लिख दिए थे, क्योंकि उनको मालूम था अगर ये दो श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु देखेंगे तो उन फाटने वाले हैं। तो महाप्रसाद जैसे दिया श्री चैतन्य महाप्रभु श्लोकों को खोल के देखा, तुरंत तो जो बचिता उन्होंने खोल के फेंक दिया, क्योंकि उन श्लोकों में सारमठाचार्य क्या लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जो है साक्षात कृष्ण है करके लिख देते हैं। तो वो जो महत्वपूर्ण श्लोक जो हम लोग मंगलाचरण में उच्चारण करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी शिक्षा कृपाम्बुधर यस्तमहं प्रपद्ये। मैं ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जो कृपा के अम्बुधि है, कृपा के सागर है। उन्होंने क्या किया, इस संसार में कृष्ण चैतन्य के रूप में आए, वो कृष्ण ही है लेकिन कृष्ण चैतन्य के रूप में क्यों प्रकट हुए, शिक्षार्थमेकम, केवल शिक्षा प्रदान करने के लिए। किसका शिक्षा प्रदान करने के लिए, भक्ति का शिक्षा प्रदान करने के लिए, जो वैराग्य विद्या है। भक्ति का दूसरा नाम क्या है, वैराग्य विद्या है, उसको देने के लिए। तो देन दीज वर्सेस आर कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वेल द फॉलोअर्स ऑफ श्री चैतन्य। ये दो श्लोक है, एक दूसरा भी श्लोक है वो भी इसी प्रकार का श्लोक है। ये दोनों श्लोकों को श्री चैतन्य महाप्रभु अनुगामी सोचते हैं कि सारे जितने भी श्लोकों में सर्वश्रेष्ठ श्लोक के रूप में माना जाता है। देन देशो सारमठाचारी टू बी द हाईएस्ट ऑफ ऑल द डिवोटीज, ये श्लोकों के द्वारा साबित किया जा सकता है कि सारमठाचारी जो है बहुत सारे भक्तों में से बहुत सर्वश्रेष्ठ भक्त है। और एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु और सारमठाचारी के बीच में जब संवाद हो रहा था, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रस्तुत किया एक श्लोक भागवतम से, जिसमें मुक्ति पदे करके शब्द आता है। बोला जाता है कि तत्तेर गंपा सुसमीक्षमाण मुंजान मेवात्म तिदम विपाकम विद्वाग वभुवे विदाम नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भागवतम के दसवें स्कंद में ब्रह्मा जी का प्रार्थनाओं में आता है, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक भक्त को कैसे जीना चाहिए। और बोलते हैं कि तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, तत् मतलब भगवान का अनुकंपा, भगवान के अनुकंपा या कृपा का सुसमीक्षमाणो, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमेशा इंतजार करते रहो, ऑलवेज वेटिंग टू गेट द मर्सी ऑफ कृष्ण। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजानमेवात्मकृतं विपाकम्, एक है भगवान की कृपा का इंतजार करते रहना, कब मुझे भगवान की कृपा प्राप्त होगा। दूसरा क्या है, विद्वाग फिर तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजानमेवात्मकृतं विपाकम्, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है अच्छा या बुरा हो, ये सब कुछ अस्तित्व में किसकी वजह से हो रहा है, मेरे पहले किए गए कर्मों की वजह से हो रहा है। एक तो भगवान की कृपा का इंतजार करना, दूसरा है कि जो भी जीवन में हो रहा है अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है ये सोचना है कि मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, उससे कुछ मेहनत लेना नहीं, जो हो रहा है होने दो। तो ये दो बातों को, और तीसरी बात क्या है, हमको क्या करना है, हृदय से वाणी से और वपु से शरीर से विदधाम नमस्ते, हम हमेशा भगवान का प्रणाम करते हुए उनको गुणगान करते हुए जीवन यापन करना है। तो अगर कोई व्यक्ति ये तीन बातों को अपने जीवन में स्वीकार करता है, एक भगवान और कृपा का इंतजार करना, जस्ट वेट फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, जस्ट कोई समय की बात है, ही शुड लिव हिज लाइफ लाइक दिस जस्ट वेटिंग व्हेन आई एम गोइंग टू गेट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। नंबर टू, जो भी हो रहा है वो अपने कर्मों में हिसाब से जो अच्छा बुरा है वो होने दो, इस प्रकार सोच। और तीसरा कि हृद्वा कुबेर विदधाम नमस्ते, हृदय से वाणी से वपु से भगवान की सेवा करते हुए जीना। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार अपना जीवन यापन करता है, जीवेत यो मुक्ति पदे सधाय वा, उस व्यक्ति को मुक्ति पदे, उस व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है, जिस प्रकार दाय भाग, यानी जिस प्रकार एक पुत्र को अपने पिताजी का संपत्ति प्राप्त होता है, अपने पिताजी का संपत्ति प्राप्त करने के लिए पुत्र को क्या करना है, वो खाली इंतजार करना है। जब उनका पिताजी का कालांतर्गत उनका शरीर त्याग करेंगे या जैसे उनका मृत्यु होता है, तो स्वाभाविक तरीके से उनका पिताजी का संपत्ति है पुत्र को आता है, वो पुत्र को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, उसको खाली इंतजार करना होता है। तो वैसे ही एक व्यक्ति जो इस प्रकार अपना जीवन यापन करता है, जैसे पहले कहा गया कि क्या है वो, भगवान की कृपा का इंतजार करना, हमेशा जो भी हो रहा है जीवन में, जो भी अच्छा हुआ जो भी हो रहा है सोचना है कि भगवान मेरे कर्मों के हिसाब से हो रहा है, और तीसरा कि ये भगवान को हृदय से वाणी से और तनु से शरीर से सेवा करना, जो व्यक्ति ये करता है तो मुक्ति प्रदेश है, उसको मुक्ति प्राप्त होता है। जैसे सारमठाचार्य ने श्लोक को उच्चारण किया, बोले कि ये जो श्लोक है ये गलत है, श्री चैतन्य बोले अरे क्यों भाई, तास्तेत में ये श्लोक में ये मुक्ति पदे जो है ना ये काट देना चाहिए, इधर होना चाहिए भक्ति पदे सुधाई बाप। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे सारमोटाचार्य को, अरे क्या हो गया आपको, आपने पूरा जीवन भर मुक्ति 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 बोलते रहे, अभी ये श्लोक को देख के इधर मुक्ति का शब्द देखने से आपको घृणा हो रहा है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा की वजह से इस प्रकार के परिवर्तन हो सकता है। लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि अस्तित्व में ये जो शब्द है मुक्ति पदे ये ठीक है, क्योंकि मुक्ति पांच प्रकार का है, ठीक है, हाँ, सावज्य मुक्ति, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्ठा, सालोक्य, ये हमेशा ये पांच प्रकार की मुक्ति जो है भगवान के मुक्ति पदे भगवान के चरण कमलों के पास रहता है। और साथ साथ में वास्तविक मुक्ति क्या है, हाँ, द रियल मुक्ति, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण उपस्थिति, इसको भक्ति पदे की बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उधर भगवान का ही वर्णन हुआ है कि वो मुक्ति पदे है। टोल्ड हिम देयर इज नो नीड टू चेंज बिकॉज मुक्ति पदे इज द नेम ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जिनके चरण कमलों में मुक्ति रहता है उनका नाम है, उनका उनका नाम मुक्ति पदे है, तो भगवान का एक नाम है, तो इसलिए भक्ति पदे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये मुक्ति पदे शब्द ठीक ही है। बट सारमोटाचार्य सेड दैट द वर्ड मुक्ति nonetheless had an equivocal ring in his ear. जैसे मैं मुक्ति का शब्द सुनता हूँ ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ बहुत प्रॉब्लम है, ये मुझे घृणा महसूस हो रहा है। तो it reminds him of the impersonal मुक्ति, जैसे मुक्ति समझता हूँ तो मुझे बाकी मेरे पिछला जीवन में जो भी किया है यानी आपका उद्धार करने से पहले की जो बात है वो सब मुझे याद आता है, इसलिए मैं इस प्रकार की धारणा बना के रखा हूँ। He preferred bhakti because there is no chance of any misunderstanding. कोई गलत मतलब लेने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिर हो। तो इस प्रकार सारमोटाचार्य का हृदय परिवर्तन हुआ और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य संगी बन के सारमोटाचार्य रहे। और समय आया तब श्री चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे कि मुझे अभी प्रचार करने के लिए जाना है, लेकिन अगर लोगों को बोलेंगे मैं प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ तो सारमोटाचार्य और जितने भी गोपीनाथ आचार्य जितने भी संघ में हैं निकटतम संघी है क्या वो लोग चैतन्य महाप्रभु को छोड़ेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक प्लान बनाया, उन्होंने बोला कि अस्तित्व में मेरा भाई विश्वरूप है, वो विश्वरूप जो है संन्यास लेके भटक रहे इधर उधर, मैं विश्वरूप को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो सभी लोग को इस बात को खंडन नहीं कर सकते, तो इसलिए सभी लोगों को मानना पड़ा। लेकिन फिर भी सारमोटाचार्य बोलने लगे आपके विरह में मैं पता नहीं मैं जीऊंगा कि नहीं, आप जरा कुछ दिन और रुकिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ दिन और जगन्नाथपुरी में रुके। बाद में जब समय आया तो सारमोटाचार्य सबको बोल के आखिरी में सारमोटाचार्य को बोलते हैं कि मैं अभी दक्षिण भारत के लिए जा रहा हूँ, अस्तित्व में वो प्रचार के लिए जाना चाहते थे। तो क्या अभी लेकिन उन सबको बोले मैं विश्वरूप को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तब कैसे भी करके सब लोग कन्विंस किए अब दक्षिण भारत को जा रहे हो तो कम से कम कृष्ण दास को एक व्यक्ति को असिस्टेंट के रूप में तो रखिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया और सभी लोगों ने उनको कमंडलू और दंडा और कुछ वस्त्र वगैरह उनको दिए। सारमोटाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु आगे जा रहे थे कृष्ण दास के साथ और सारमोटाचार्य पीछे पीछे चले श्री चैतन्य महाप्रभु का। जैसे जगन्नाथपुरी के बॉर्डर तक पहुंचे तो श्री चैतन्य महाप्रभु आगे चलते चलते गए तेजी से और सारमोटाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को देखते उनको विरह को मैं उनका जो उन दोनों के बीच में जो विरह है वो सहते नहीं सह पाए और सारमोटाचार्य बेहोश हो गए और श्री चैतन्य महाप्रभु पीछे मुड़ के देखा भी तक नहीं। तो एक निष्ठावान सन्यासी के रूप में न जिनका हृदय जो है पत्थर के रूप में रहता है, एक उनका वैराग्य जो है पत्थर के जैसा रहता है, हाँ उनका हृदय पत्थर के रूप में हो जाता है वैरागी का, तो उस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी कठोरता को दिखाते हुए वो आगे चल के आगे चल पड़े। तो उधर कृष्णदास के विराज स्वामी लिखते हैं ये श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय को समझना बहुत मुश्किल है, कभी वो फूल की माँ भी एकदम कोमल हो जाता है कृष्ण का नाम सुन के उनका पूरा हृदय पिघल जाता है, वही हृदय अभी सारमोटाचार्य बेहोश हो गए लेकिन फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देखे। एक कठोर एक निष्ठावान सन्यासी के रूप में वो सारे जो संसारिक संबंध को त्याग किए है तो उस व्यक्ति के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु आगे चले दक्षिण भारत की यात्रा की करते हुए। लेकिन जाने से पहले सारमोटाचार्य जब श्री चैतन्य महाप्रभु बताया आप दक्षिण भारत में जब जाओगे जरूर एक व्यक्ति से मिलना। राजमंड्री के पास कोवूर करके जगह है, उधर रामानंद राय करके हमारे करीब मित्र है। मैं पहले सोचता था कि रामानंद राय एक भाव व्यक्ति है, लेकिन आपके संग में आने के बाद अभी रामानंद राय एक महान भक्ति करके मुझे मालूम पड़ा। उनके अंदर बहुत सारे कृष्ण के भक्ति के कृष्ण के वजह बहुत आकर्षण है। वो कृष्ण तत्व को इतना अच्छी तरीके से वर्णन कर सकते हैं, जरा आप जब दक्षिण भारत में जाओगे रामानंद राय से जरूर मिलना और उनके साथ अपना उनको अपना संग प्रदान करना करके श्री चैतन्य सारभट्टाचार्य रामानंद राय के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में निकलते हुए सिंहाचल तक पहुंचते हैं, जी आर नरसिंह का दर्शन करते हैं और राजमंड्री पहुंचते हैं, रामानंद राय के साथ उनका संवाद होता है। तो कल हमारा रामानंद राय के साथ संवाद का है और आप सब लोगों का संवाद रामानंद राय के संवाद चर्चा होने के बाद हम थोड़ा सा एक घंटा उसका चर्चा करेंगे। उसके बाद 15-20 मिनट समय में आपको परीक्षा भी होगा, आपका क्वेश्चन पेपर तो दिया गया है। वो परीक्षा में मैं आशा करता हूँ सभी को 100 out of 100 आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है, तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सबको तो आंसर से बता दिया है और किसको ऐसा डाउट है कुछ आंसर्स नहीं मालूम है तो अपने मित्रों से इधर उधर कॉन्टेक्ट करके पूछ लीजिएगा। तो एक इनका जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसको हिंदी में भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, हिंदी में लिख सकते हो, एक गुजराती में मत लिखिएगा। हरे कृष्णा। और कल भक्तिवेंद्र कॉलेज का ओपनिंग है तो आप सबसे निवेदन है और भी लोगों को लेके आइए, उसमें रजिस्टर कीजिए ताकि आप भगवद गीता को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भगवद गीता ओवरव्यू के बाद 32,000 होगा, भगवद गीता ओवरव्यू सर्टिफिकेट के बिना 32,000 नहीं कर सकते, 32,000 के बाद आप भक्ति शास्त्री कर सकते हैं। तो भक्ति शास्त्री करने के लिए 32,000 सर्टिफिकेट चाहिए। तो वैसे ये पूरा भक्तिवेंद्र कॉलेज के द्वारा एक नियमित रूप में बहुत सिस्टमैटिक स्टडी होगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे और आप सबसे निवेदन है उसको बहुत सीरियस ले लीजिए। ये मत सोचिएगा ठीक है ये भी एक प्रवचन है, नहीं ये एक शिक्षा है। जैसे आपको मालूम है चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक उद्देश्य क्या है, आने का शिक्षार्थम एकम पुरुष पुराण, हमारा भक्तिवेंद्र कॉलेज उस श्लोक के ऊपर आधारित है जो गौड़ीय वैष्णवों का सारे श्लोकों में सार शिरोमणि के रूप में माना जाता है। जैसे आज हमने आज सीखा सारभट्टाचार्य द्वारा लिखित श्लोक है, तो ये शिक्षा प्रदान करना मंदिर का मुख्य कर्तव्य होता है। तो इसलिए उस उद्देश्य को लेके हुए श्री प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारा मंदिर जो है वो एक और एक मंदिर नहीं है बल्कि वो एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय है जहाँ शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो एक व्यवस्थित रूप में शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली है ये भक्तिवेंद्र कॉलेज। सो प्लीज डू टेक इट सीरियसली। हिंदी में जो रुचि रखते हैं क्लास करने का वो ठीक 10 बजे सुबह आ जाए, जो इंग्लिश में रुचि रखते हैं वो ठीक 11:30 बजे आ जाए। हरे कृष्ण।